कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रिय मित्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों न्यायों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एक नाजिर को परमेश्वर किस रीति से अलग करता है, जिसमें हमने शिमशोन के विषय में देखा। मेरे मित्रों, 7वीं बार जब इसराइल ने परमेश्वर का त्याग किया तो परमेश्वर ने उन्हें पलिस्तियों के अधीन कर दिया और 40 वर्ष कष्ट भोगने के बाद उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने मानोह की पत्नी को, जो बांझ थी, पुत्र प्राप्ति की प्रतिज्ञा दी और कहा कि वह नाजीर होगा और इसराइलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। अतः शिमशोन का जन्म हुआ और परमेश्वर का आत्मा उसे उभारने लगा। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से आरंभ कर रहे हैं और सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे शिमशोन को पत्नी की प्रतिज्ञा। यह अति अद्भुत बात है कि परमेश्वर का आत्मा किसी पुरुष पर ऐसा उतरे। यह तो स्पष्ट ही है कि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता था, जैसा मैंने कहा कि वह स्त्री के पल्लू में मुंह छिपाए रहता था। अध्याय 14 में हम यही बात को देखते हैं। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक दब्बू पुरुष ही ऐसा व्यवहार करेगा। उसने उस स्त्री से सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया कि वह उससे प्रेम करता है और विवाह करना चाहता है? उसने स्वयं ही उसके माता पिता से बात क्यों नहीं की? उस युग में जब विवाह की बात चलती थी तब व्यवहार का लेन देन होता था और उसने स्वयं ही उसका प्रबंध क्यों नहीं किया? मेरे प्रियो, वह दब्बू था, इसलिए उसे माता पिता के सहारे की आवश्यकता थी। हम न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे पढ़ते हैं। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिस्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिस्ती इसराइल पर प्रभुता करते थे। मेरे प्रियो, शिमशोन अपने विवाह को इसराइल की मुक्ति का एक बहाना बना रहा था। शिमशोन शेर को मारकर एक पहेली बनाता है। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, नाजीर के लिए अंगूर का कोई भी रूप खाना मना था, परंतु शिमशोन के लिए नहीं। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 6 से 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। मेरे मित्रों, तिम्ना नगर के मार्ग में एक शेर ने शिमशोन पर आक्रमण किया और इस आपातकालीन स्थिति में शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और शिमशोन ने निहत्थे होने पर भी उस शेर को मार दिया। अब जब वे दूसरी बार तिम्ना को जा रहे थे तब शिमशोन उस मृतक शेर को देखने गया। उसमें मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था, अतः उसने अपने हाथ से शहद निकालकर खाया। उसने अपने माता पिता को भी शहद दिया, परंतु उन्हें नहीं बताया कि वह शहद कहां से आया है। आपको स्मरण होगा कि नाजीर नियमों के अनुसार मृतक देह से संपर्क वर्जित था, अर्थात छूना मना था। तब हम आगे देखते हैं 14 अध्याय उसके 10 से 14 पद में लिखा हुआ है, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ जीवनार की। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहली कहता हूँ, यदि तुम इस जीवनार के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से बीठी वस्तु निकली, इस पहली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। मेरे मित्रों, प्रथा के अनुसार शिमशोन को विवाह भोज का आयोजन करना था और यह भोज बहू के घर पर आयोजित किया गया था। अतिथिगण फलिस्तियों का ही था और पहली पूछना उस युग में मनोरंजन का एक भाग था। शिमशोन ने अतिथियों से एक पहली पूछी और उन्हें 7 दिन का समय दिया कि उसका उत्तर दें। यदि उनका उत्तर सही हुआ तो शिमशोन उन्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देगा, और यदि वे उत्तर न दे पाए तो वे उसे कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देंगे। शेर के मारे जाने और उसमें मधुमक्खियां द्वारा छत्ता बनाने की घटना को जाने बिना इस पहेली का उत्तर देना वास्तव में असंभव था। शिमशोन के साथ धोखा किया गया और परिणाम स्वरूप उसने 30 फलिस्ती पुरुषों को घात किया। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों 14 अध्याय उसके 15 से 18 पद में, 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली के अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा न्योता किया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता, बैर ही रखता है कि तूने एक पहली मेरी जाति के लोगों से कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? और जीवनार के 7 दिन में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहली का अर्थ बता दिया, तब उसने उसे अपने जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है? उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहली को कभी न बूझते। मेरे मित्रों, पलिस्तियों ने शिमशोन की पत्नी को धमकी दी कि वह शिमशोन से इस पहली का अर्थ पूछे, अन्यथा वे उसे घर समेत आग में जला देंगे। आपको मालूम है कि स्त्री का सबसे बड़ा हथियार है उसके आंसू। वह 7 दिन तक रोती रही, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्त्री 7 दिन तक रोती रहे और भोजन करते समय भी रोती रहे तो वह गुस्सा दिलाती है। अंत में शिमशोन हार कर उसे उत्तर बता देता है। मित्रों, शिमशोन काव्य रूप भी अच्छा बना लेता था। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहली को कभी न बूझते, अर्थात तुमने मेरी पत्नी से यह उत्तर पाया है। तब हम आगे देखते हैं न्यायों की पुस्तक के 14 अध्याय और उसके 19 पद में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने आश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। मेरे मित्रों, यहोवा का आत्मा शिमशोन पर उतरा और उसने आश्कलोन जाकर दक्षिण में 30 पलिश्तियों को मार डाला कि 30 कुर्ते और कपड़े लाकर पहले बूझने वालों को दे दिए। शिमशोन अप्रसन्न था, वह अपनी पत्नी से क्रोधित था कि उसने विपक्षियों को पहली का अर्थ क्यों बताया, अतः वह उसे अपने साथ घर नहीं लाया। हम न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को जिससे उसने मित्र का सा वर्ताव किया था ब्याह दी गई। लड़की का पिता क्या करता, अतः उसने लड़की का विवाह किसी और के साथ में कर दिया। आगे हम पाते हैं कि शिमशोन फलिश्तियों के खेत जला देता है। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपने ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरे में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले। मेरे प्रियो, क्रोध शांत हो जाने पर शिमशोन अपनी पत्नी के पास गया और उपहार स्वरूप एक बकरी का बच्चा भी साथ में ले गया। लड़की के पिता ने शिमशोन से कहा कि उन्होंने सोचा शिमशोन ने उसे त्याग दिया है, अतः उन्होंने उसका विवाह किसी और के साथ कर दिया है। इस बात से शिमशोन रुष्ट हुआ। हम न्यायों की पुस्तक के 15:3-5 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिस्तियों के बड़े खेत में छोड़ दिया और पुलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। मेरे प्रियो, पलिस्तियों से बदला लेकर शिमशोन को प्रतीत हुआ कि उसने उचित ही किया है। उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ बांधकर उसमें मशाल बांध दी और मशाल जलाकर पलिस्तियों के खेतों में छोड़ दिया। लोमड़ियां खेतों में भागी तो फसल में आग लग गई। मित्रों, यह घटना एक बालक के खेल के समान लगती है। यहाँ शिमशोन परमेश्वर का जन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह है। हम न्यायों की पुस्तक 15:6-8 पद में पढ़ते हैं, तब पलिस्ती पूछने लगे कि यह किसने किया है। लोगों ने कहा, उस तिमनी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके संगी को ब्याह दी। तब पलिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह उसका व्यक्तिगत बदला है। इसमें इसराइल की मुक्ति का ईश्वरीय प्रयोजन नहीं है। उसके इस काम से इसराइल की मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, यह उसका व्यक्तिगत बदला है। शिमशोन 1,000 पलिस्तियों को मारता है। पलिस्तियों को ऐसी बड़ी संख्या में घात किया जाना पलिस्तियों के लिए चिंता का कारण बन गया था। उन्होंने शिमशोन को पकड़ना चाहा तो शिमशोन ने यहूदी वासियों से कहा कि वे उसे रस्सियों से बांधकर वैरियों को सौंप दें। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण पलिस्ती इसराइलियों को कष्ट दें। न्यायों की पुस्तक 15:14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह लहित तक आ गया था कि पलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग से जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। मित्रों, यहूदा वासी अपने बंदी शिमशोन को रस्सियों से बांधकर लही तक ले आए। यह पलिस्तियों के अधिकार का स्थान था। वैरी शिमशोन को बंधा हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। उसने रस्सियां ऐसे तोड़ दी जैसे कि राख की रस्सियां हो। यहां हम उसका बल देखते हैं जो वास्तव में उसका अपना बल नहीं परंतु परमेश्वर का बल है। न्यायों की पुस्तक 15:15 पद में लिखा हुआ है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1,000 पुरुषों को मार डाला। मेरे प्रिय मित्र, शिमशोन के हाथ गधे के जबड़े की हड्डी लगी और वही उसका हथियार भी हुआ। उसने उसी की सहायता से 1,000 पलिस्तियों को मार गिराया। उसका बल देखिए कि वह कितना बलवंत था। अपने शक्ति में वह ऐसा कभी नहीं कर पाता। परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ उसमें समा गया था। वह इसराइल की मुक्ति का आरंभ था। काश वह इसी लक्ष्य को साधे रहता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अगले अध्याय में हम उसकी गलतियों को देखेंगे कि शिमशोन की नैतिक दुर्बलता क्या थी। हम देखते हैं 16:1-2 पद में लिखा है, तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देकर उसके पास गया। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि विहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। मेरे मित्रों, शिमशोन कैसा रसिया था। अर्थात मौज मस्त करने वाला व्यक्ति था। गाजा के लोगों ने नगर द्वार बंद कर दिए और कहा, हम सुबह होते ही शिमशोन को मार डालेंगे। आइए हम आगे देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। मेरे मित्रों, मध्य रात्रि जब शिमशोन जागा तब उसने देखा कि नगर द्वार बंद है। उसने क्या किया? उसने पूरा का पूरा द्वार उखाड़ा और हेब्रोन के सामने एक पहाड़ के ऊपर ले गया जो वहां से लगभग 40 मील की दूरी पर था। क्या यह एक बालक की शैतानी या कॉलेज के विद्यार्थियों का उत्पात सा नहीं लगता है? शिमशोन का लड़कपन समाप्त नहीं हुआ था। उसे इसराइल की मुक्ति के लिए यह असीम सामर्थ्य प्रदान किया गया था, परंतु वह इसे अपने अनर्थ के कामों में लगा रहा था। और शिमशोन और दलीला के विषय में हम आगे देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 4 पद में, इसके बाद वह सोरेक नाम नाले के रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। यह शिमशोन के पतन की कहानी है। यह घटना उसके जीवन की एक महान चूक या गलती थी। यह उसके जीवन की दुर्बलता थी। वह उस स्त्री से प्रीति करने लगा, अर्थात प्रेम करने लगा। मनुष्य पाप में अकस्मात ही नहीं गिर जाता है, वह धीरे धीरे होने वाली अपनी प्रतिक्रिया में फंसता चला जाता है। मेरे मित्र ने मुझे एक बार बताया कि उसकी कलीसिया में एक बैंक का कर्मचारी है और वह उसके साथ जेल में कैदियों को ट्रैक्ट बांटने के लिए, अर्थात सुसमाचार के पर्चे लेकर उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए जाया करता था। वह एक असाधारण व्यक्ति दिखाई देता था। एक दिन वह लापता हो गया। वह छुट्टियों पर चला गया। बैंक के पैसों में गड़बड़ी हो गई। कोई उस पर शक नहीं कर सकता था। उन्होंने हानि के कारण का पता लगाना शुरू किया और अन्य जगह पर उन्होंने ढूंढ ढांड की, परंतु सफल नहीं हुए। अंत में उन्होंने यही सोचा कि संभवतः इसी व्यक्ति ने पैसा निकाला है। जब वह छुट्टियों से लौटा तो उन्होंने उसे खोजना आरंभ किया। खोज पूरी हो जाने पर उन्हें पता चला कि वह वर्षों से पहले पैसों का गबन कर रहा है। मनुष्य अकस्मात या अचानक ही पाप में नहीं गिरता है, या वर्षों से यह कार्य में फंसा हुआ था। मेरे मित्रों, आज भी मनुष्य का सबसे बड़ा विनाशकारी पाप अवैध शारीरिक संबंध है। शिमशोन का भी यही पाप था। वह दलीला नामक एक स्त्री के मोह जाल में फंस गया, जहां तक हम जानते हैं कि वह उससे विवाह करना नहीं चाहता था, अर्थात सिर्फ शारीरिक आनंद लेना चाहता था। हम न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर बूझ ले कि उसके महाबल या महाबली होने का भेद क्या है, और कौन उपाय करके हम उसे ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सके। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बंधा जाऊं तो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, दलीला निश्चय ही शिमशोन से अधिक पैसों की लगाव रखती थी। एक बार फिर फिलिस्तियों को शिमशोन पर हाथ डालने का अवसर मिला। ध्यान दीजिए कि शिमशोन उसे टालने वाले उत्तर देता है। उसने रस्सियों को बिना प्रयास तोड़ा और उसे तोड़ दिया। उसके बल का भेद गुप्त ही रहा। तब हम आगे देखते हैं 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया है और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। फिर ध्यान दीजिए कि वह इस बार भी उसे बहका रहा था। उसने उसे स्वयं को रस्सियों से बांधने दिया और जब उसने पुकारा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है, तब उसने कच्चे धागों की नाई रस्सियों को फिर से तोड़ दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं न्यायों 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने ये तीनों बार मुझसे छल किया है और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गए, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, इस बार दलीला ने उससे कहा कि यदि वह वास्तव में उससे प्रेम करता है तो उसे अपनी शक्ति का भेद बताएगा। अतः शिमशोन ने उसे बता दिया कि वह नाजिर है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि इस शपथ का चिन्ह लंबे बाल थे। उसकी शक्ति वास्तव में उसके बालों में नहीं, परमेश्वर की आत्मा में थी जो उस पर उतरता था। दलीला ने देखा कि वह एक मूर्ख है और वह था भी। हम न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 18 से 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर के सातों लटे मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, जब शिमशोन सो गया तब दलीला ने एक पलिस्ती को बुलवा कर उसके बाल मुड़वा दिए। तब दलीला ने चौथी बार पुकारा, हे शिमशोन, पलिस्ती तेरी घात में है। वह नींद से जागा और सोचा कि पहले के समान वह उन्हें हरा देगा, परंतु वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे मित्रों, उसकी शक्ति बालों में नहीं थी, उसकी शक्ति परमेश्वर का आत्मा था जो उसमें उपस्थित था। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक शक्ति अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों में नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा में है। एकमात्र उसी में है जो हमें सामर्थ्य देता है। शिमशोन को इसराइल का न्यायी होने के लिए चुना गया था कि उनको मुक्ति दिलाए और उन्हें पलिस्तियों के अत्याचार से मुक्त कराए। वह एक सांसारिक मनुष्य सिद्ध हुआ। उसके ऊपर ईशाबोध की मुहर लग गई, अर्थात महिमा का प्रस्थान। उसने सेना कभी भी तैयार नहीं की, उसने एक भी युद्ध नहीं जीता, उसने इसराइलियों से लगाव नहीं रखा और कामाचार उसके विनाश का कारण हुआ, जबकि वह परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था। आइए हम आगे पढ़ें। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय के 21 से 23 पद में लिखा हुआ है, तब पलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिस्तियों के सरदार अपने दागोने नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। मेरे मित्रों, अब हम इस पुरुष का दुखद अंत देखेंगे। उन्होंने शिमशोन को बंदी गृह में डाल दिया और बंदी बनाकर उसकी आंखों को निकाल दी और उसे बंदी गृह में पशु के समान काम करने में लगा दिया। बंदी गृह में उसके बाल बढ़ने लगे और उसे पश्चाताप भी हुआ और उसने पश्चाताप भी किया। पलिस्तियों ने शिमशोन को बंदी बनाने का श्रेय अपने देवता दागोन को दिया और विजयोत्सव का आयोजन भी किया। शिमशोन की मृत्यु के द्वारा पलिस्तियों से बदला वह किस प्रकार से लिया, आइए हम पढ़ें। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय के 25 से 27 पद में लिखा हुआ है, जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खम्भों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खम्भों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुष से भरा हुआ था और पलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। मेरे मित्रों, अपने उत्सव को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए उन्होंने शिमशोन को बंदी गृह से बुलवाया और उसकी निंदा करने लगे और लगभग 3,000 स्त्री और पुरुष शिमशोन का उत्पीड़न देख रहे थे। हम पढ़ते हैं न्यायों 16 उसके 28 से 31 पद में लिखा हुआ है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और शिमशोन ने कहा, पलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनमें से अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और इस्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इसराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। मित्रों, हम देखते हैं कि शिमशोन एक असफल व्यक्ति था। उसने इसराइल की मुक्ति का काम आरंभ तो किया परंतु चूक गया। उसने पाप से खिलवाड़ करना चाहा और परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कई ऐसे भाई और बहन हैं जो पाप से खिलवाड़ करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके परिवार, उनके लोग, उनके मित्र इन सारी बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हरेक हरकतों को, हमारे हरेक क्रियाकलाप को जानता है और देखता है। और याद रखें कि परमेश्वर शिमशोन जिसे उसने चुना था उसके जीवन को भी छोड़ सकता है तो वह आपके जीवन को भी नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती शिमशोन के जीवन से है कि हम पाप से खिलवाड़ ना करें, अन्यथा हम भी उस नाश का सामना करेंगे। मेरे मित्र, आज हम शिमशोन के जीवन से देखते हैं और सीखते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके लिए अपने जीवन को अर्पण करें और अपने पापों से पश्चाताप करें ताकि हम परमेश्वर के सही व्यक्ति और सही विश्वासी के रूप में अपने जीवन को बिताने पाएं और परमेश्वर का आत्मा हमें अपने कार्यों में, हमारे विश्वास योग्यता में साथ रहने दे। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने अवश्य ही शिमशोन के जीवन से एक सबक सीखा है और जाना है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें, मेरी असफलताओं से आप मुझे निकालें। प्रभु आप सबको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।